आवयोर अनुरूपो आसाद्यः वैवाहिको विदहे। ऋषिरुवाच पाडं उद्भोडुकामो अहं प्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपोर आसौ आद्यो वैवाहिको विदिहे। उवाच कहा बाढ़ एवं अस्तु कामः विवाह का इच्छुक अहम् मैं अप्रत्ता अन्य किसी से वचनबद्ध न होना। अरे भाई पी बोलो तो पीछे कम से कम, ये आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, तो मुझे डायरेक्ट में तात्पर्य पढ़ सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। आप लोग पीछे बोले करके ये किया जाता है। ये तो एक काम कीजिए, कल से आप लोग क्लास दीजिए। आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है ना, ऋषिरुवाच महामुनि ने उत्तर दिया, निस्संदेह मैं विवाह का इच्छुक हूं और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। तात्पर्य, स्वयंभुव मनु की कन्या को स्वीकार करने के पूर्व कर्दम मुनि ने समक्ष विचारणीय बातें अनेक थी। कर्दम मुनि के समक्ष विचारणीय बातें अनेक थी। प्रथम तो यह कि देवहूति ने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय कर रखा था, वह अन्य किसी को अपना पति बनाना नहीं चाह रही थी। सबसे बड़ी विचारणीय बात थी और यह सबसे बड़ी विचारणीय बात थी क्योंकि जब कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है तो उसे वापस लेना कठिन होता है। यही स्त्रियों का मनोविज्ञान है। साथ ही इसके पूर्व उसका विवाह भी नहीं हुआ था, वह कुंवारी थी। इन सब बातों से कर्दम मुनि ने उसे स्वीकार कर लिया, अतः उन्होंने कहा हाँ विवाह के धार्मिक नियमों के अनुसार मुझे आपकी कन्या का स्वीकार है। विवाह के भी कई प्रकार है। उत्तम विवाह वह है जिसमें उपयुक्त वर को बुलाकर कन्या को वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित करके तथा पिता की सामर्थ्य के अनुसार वर दक्षिणा देकर कन्या अर्पित की जाती है। विवाह के अन्य प्रकार भी है यथा गंधर्व विवाह तथा प्रेम विवाह, इन्हें भी विवाह माना जाता है। यदि कोई कन्या बलपूर्वक हरी जाकर बाद में पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती है तो उसे भी विवाह मानते हैं, किंतु कर्दम मुनि ने विवाह की उत्तम प्रणाली स्वीकार की क्योंकि कन्या का पिता चाह रहा था और वह कन्या भी योग्य थी। उसने किसी अन्य के साथ प्रेम नहीं किया था। इन सब बातों से कर्दम मुनि को स्वयंभू मनु की कन्या को ग्रहण करने के लिए राजी हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावद्भुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। मा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषि उवाच। बाढ़ उद्भोड़ कामो अहम प्रत्ताच तवात्मजा अवयोर अनुरूपो आसावाद्यो वैवाहिको विधि। कर्दम मुनि ने उत्तर दिया, निस्संदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। यहाँ पे मनुष्य जाति के लिए और विशेषकर में जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए कुछ विचारणीय बातें बताई गई है जिनकी चर्चा हो रही है यहाँ। विवाह किस कन्या के साथ कर सकते या हो सकता है उसके बारे में कर्दम मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो वो कि उस कन्या का पहले विवाह ना हुआ, यानी वो कुंवारी हो, यानी उसका पूर्व विवाह ना हुआ। और दूसरा है कि उसने पहले ही किसी दूसरे को विवाह के लिए वचन नहीं दिया। और प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये स्त्रियों का मनोवैज्ञानीय या मनोवैज्ञानीय गुण है कि अगर कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है तो उससे वापस लेना कठिन होता है। जैसे आपके जनरेशन में देखा जाता है कि किसी भी स्थिति में विवाह अगर किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो उसके प्रति आपके मन में कभी उसको छोड़ने का भाव नहीं आता, उसके प्रति एक पातिव्रत का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप में वो पवित्रता रहती है। कुंवारी अवस्था में ना किसी दूसरे पुरुष के प्रति आपके मन में आसक्ति रहती है ना? इसी कारण हम देखते हैं कि हमसे पहली जो पीढ़ी थी उनमें ज्यादा करके विवाह विच्छेद या जिसको डिवोर्स कहा जाता है ये नहीं होता था। हाँ, झगड़े तो होते थे, वो तो अनादिकाल से होते आए पति पत्नी के बीच में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका उपाय यानी बस एक दूसरे को छोड़ दो और निकल जाओ, अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लो। हाँ, क्योंकि उनमें पतिव्रता थी, उनमें पावित्र्य था और पति भी एक पत्नी व्रत धारण करते थे, वो दूसरी किसी स्त्री के बारे में सोचते नहीं। अगर ऐसी पीढ़ी हो तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उनमें भी ये गुण उतर जाते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आजकल के इस जनरेशन में या आजकल की जो पीढ़ी है उनमें ये गुण है, और उसका कारण भी है। ये आधुनिक शैक्षणिक पद्धति जो है जिसमें सहशिक्षण दिया जाता है, स्त्री बालक और कन्याओं को दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है, स्त्री की आयु की एक अवस्था में वे जब किसी पुरुष को मन दे देते हैं तो उससे उसको वापस लेना उनके लिए कठिन होता है, और फिर जब इतने व्यक्ति इतने पुरुष उनके जीवन में आ चुके होते हैं पहले विवाह के पहले, किसी को उन्होंने कमिट भी किया होता लेकिन बाद में किसी कारणों का हो नहीं पाते, तो फिर जब दूसरा विवाह कर लेते हैं यानी उनके जीवन का जो अभी वैसे भी कोई जैसे यहाँ पे लिखा है कि उत्तम प्रकार की जो विवाह प्रणाली है उसका तो कोई स्वीकार करता ही नहीं, खास करके ज़्यादातर लोग गंधर्व विवाह ही करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कठिन होता है एक उत्तम संतान की प्राप्ति होना, जो संतान आगे जाके समाज का एक घटक बन सके। तो जिनके जन्म का कारण ही अगर उचित ना हो तो आगे जाके हम उनसे क्या आशा कर सकते हैं कि वे लोग उत्तम प्रकार के मनुष्य बनेंगे और फिर आगे जाके भक्ति में अग्रसर रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है वे हमें अवगत होनी चाहिए, हमें जानना चाहिए उनके बारे में। ये लोग ऐसे समझा रहे हैं हम तो आश्रम में रहते हैं हमें क्या उससे लेना देना, लेकिन एक समाज की आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है कि लोग आपके पास आते हैं आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शन के लिए आते हैं, और ये सारे संस्कार है या जो जीवन के व्यवहार है ये सब आपके आध्यात्मिक जीवन के ऊपर परिणाम करते हैं ना। अगर किसी अनुरूप व्यक्ति के साथ विवाह नहीं हुआ हो तो हर समय उसका मन दुखी रहेगा, और ऐसे अस्वस्थ मन से कोई भगवान का चिंतन कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। हालांकि ये परमहंस संहिता है तो परमहंस स्थिति में भी इन बातों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि समाज में ज्यादातर लोग 90% लोग गृहस्थ आश्रम में ही जाने वाले हैं, 90 से ज्यादा जाने वाले। तो ऐसे लोगों के उत्थान के लिए अगर उन्हें मार्गदर्शन करना है तो ये बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए, और इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। अन्यथा प्रभुपाद तात्पर्य में ये सारी चीजें क्यों बताते हैं? अपनी आयु के 70 अभी वर्ष में प्रभुपाद ये तात्पर्य लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? ताकि एक ऐसे समाज की स्थापना हो जो समाज भक्ति तत्वों पर आधारित रहे, जो अन्य जीवों को भगवान के प्रति आकर्षित करे। फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कर्दम मुनि, कामः सभ्यान् नरदेवते अस्यः पुत्र्या समाम्नाम यविधो प्रतितः कयेवते तनयाम नात्रियेत स्ववैय कांत्या क्षिपतिमीव श्रियम्। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें, उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा, वह इतनी सुंदर है कि उसकी शारीरिक कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही। अब यहाँ पे कर्दम मुनि जिसके साथ विवाह करने जा रहे हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और किसको बता रहे हैं वे? प्लीज टेक आउट योर शूज आउट प्लीज। ओके, थैंक यू। करणम मुनि देवहूति के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना चाहते थे। वेदोक्त विधि के अनुसार सर्वोत्तम विधि यह है कि विवाह के अनुरूप कन्या के घर वर को आमंत्रित करके कन्या का दान किया जाए और साथ में आभूषण, स्वर्ण, साज सामान तथा अन्य गृहस्थी की वस्तुएं वर दक्षिणा के रूप में दी जाए। आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में विवाह का यह रूप प्रचलित है और शास्त्रों में इसे कन्या के पिता के लिए अत्यंत धार्मिक कृत्य कहा गया है। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना यानी कन्यादान करना गृहस्थ का पुण्य कार्य माना जाता है। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना कन्यादान गृहस्थ का पुण्य कार्य माना जाता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, किंतु इनमें से अब केवल एक ही विवाह विधि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, किंतु इनमें से सब केवल एक ही विवाह विधि ब्रह्म या राजसिक विवाह प्रचलित है। इस कलियुग में अन्य प्रकार के विवाह यथा प्रेम द्वारा, जयमाला द्वारा, अपहरण द्वारा विवाह वर्जित है। इस कलियुग में अन्य प्रकार के विवाह यथा प्रेम द्वारा, जयमाला द्वारा, अपहरण द्वारा विवाह वर्जित है। पहले क्षत्रिय अपनी इच्छा अनुसार दूसरे राज परिवार की कुमारी का अपहरण कर देते, फिर उस क्षत्रिय तथा कन्या के परिवार वालों के बीच युद्ध होता था और यदि अपहरणकर्ता विजयी होता था तो उसे कन्या दे दी जाती थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने इसी विधि से रुक्मिणी के साथ विवाह किया था और उनके और उनके कुल पुत्रों तथा पौत्रों ने भी ऐसा ही किया था। श्री कृष्ण के पौत्र ने दुर्योधन की कन्या का अपहरण किया जिससे कौरवों तथा यादवों में युद्ध हुआ। बाद में कौरव वंश के गुरुजनों ने समझौता करा दिया। प्राचीन काल में ऐसे विवाह प्रचलित थे, किंतु आज के समय में क्षत्रिय जीवन के कठोर नियमों के विघटन हो जाने से ऐसा होना दुष्कर है, क्योंकि भारत विदेशों पर आश्रित रहने लगा, फलतः उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई और शास्त्रों के अनुसार अब सभी लोग शूद्र हैं। तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों ने अपने पारंपरिक कृत्यों का परित्याग कर लिया है, फलतः वे शूद्र बन चुके हैं। शास्त्रों का कथन है, कलवो शूद्र संभवः, इस कली काल में सभी शूद्र के समान है। इस युग में सनातन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा है, यद्यपि पिछले समय में उनका कड़ाई से पालन होता था। यहां पे फिर से प्रभुपाद उन बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो आजकल हो नहीं पा रही है और कलयुग में होना संभव ही नहीं है, और उसका कारण भी बता रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद मनुस्मृति से बता दे कि वहां पे 8 प्रकार के विवाह है, ब्राह्म, आर्ष, प्राजापत्य, उसके बाद गंधर्व, राक्षसी, आसुरी और पैशाच। और प्रभुपाद यहां पे कहते हैं कि आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में विवाह का यह जो उत्तम प्रणाली है वो प्रचलित है, जिसमें पात्र वर को अपने घर पे निमंत्रित करके सारे परिवार निज परिवारों के सामने अपनी कन्या का दान करना। आजकल के समय में लोग कन्यादान इस शब्द का अर्थ ही अलग से निकाल रहे, क्योंकि ये वुमेन लिबरेशन के जो स्त्री मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें स्त्रियों को पुरुष के समान स्थान देना है, उसमें वे चाहते हैं कन्या का क्यों दान हो, हम घर जमाई लेके आएंगे। क्योंकि आजकल कन्या भी उतनी ही सक्षम है, माता जी थोड़ा उसको रोको, उतनी ही सक्षम है, तो फिर क्यों केवल उसका दान को। तो जो शास्त्रों में बताई गई विधि है, विधान है, अगर उसका हम पालन नहीं करेंगे तो समाज में केवल हाहाकार ही होगा। और वो हम देख भी रहे हैं किस प्रकार से समाज नष्ट होते जा रहा है। क्योंकि किसी महाभारत में वर्णन है कि किसी समाज की निर्माण अगर किसी समाज का निर्माण करना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उस समाज के स्त्रियों को प्रशिक्षित किया जाए। क्योंकि एक स्त्री ही एक परिवार और एक समाज को बना सकती है, बिगाड़ सकती है। तो इसे हम जान सकते हैं कि वो पुरुषों के बराबर या पुरुषों से अधिक प्रभावी है। क्या है? पुरुषों से अधिक प्रभावी है ना, क्योंकि एक स्त्री अपने प्रेम से या अपने कार्य से कितने परिवारों को प्रभावित करती है। और प्रभुपाद यहां पे बताते हैं कि विशेष करके इस कलयुग में केवल एक ही विधि है, ब्रह्म या राजसिक विवाह, जो प्रचलित है। और अन्य प्रकार के जो विवाह है ये वर्जित किए गए। आजकल अभी कुछ विवाह के लिए हमें बुलाते पुरोहित करके, लेकिन बोलते क्या है, एकदम शॉर्ट में कर लो। करना क्या है फिर? इसी के कारण विवाह के समय जो गंभीरता से अग्नि के सामने बैठकर जो हम प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उसका कोई हाँ, यहाँ पे कहते हैं ना प्रभुपाद कि गृहस्थ के लिए उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री कन्यादान अपनी पुत्री का कन्यादान करना गृहस्थ का पुण्य कार्य माना जाता है। आजकल लाखों गाय दान देने का फल एक कन्यादान से होता है, ऐसा वर्णन है। कोटि गोदान एक कन्या समान, ये महाप्रभु स्वयं चैतन्य चैतन्य बताते, खास करके अपने गौर गोविंद महाराज उनके प्रवचन में कई बार ये चीज रिपीट करते हैं। विवाह करवा दे ताकि उसी समय अगर उसका मन किसी पे आ जाए तो उसी के प्रति उसके मन में भाव रहेगा।
लड़की लोग को 10 साल में होता है,
आजकल क्या है, लोग ज्यादातर शारीरिक स्तर पे ही विवाह कर लेते हैं। विवाह का कारण वो सोचते हैं कि केवल एक कोई अपना खुद का पार्टनर मिल जाए। विवाह के पीछे जो संस्कार था वो आजकल होता ही नहीं। विधिवत विवाह करा जाए तो शास्त्रों के अनुसार 7 घंटे लगते हैं सारे विधि पूर्ण करने लिए एक दिन में, और वैसे पूरी विधि के साथ किया जाए तो 1 हफ्ता सारा विधि चलता है कि पहले ये फिर उसके बाद ये, हर एक संस्कार के लिए मुहूर्त देके वो किया जाता है। लेकिन आजकल सारी चीजें क्विक चाहिए, क्विक पुश बटन दबाया और सामने आना चाहिए। आजकल समय नहीं है लोगों के पास, इतने पैसा कमाने में इतने वो भागते रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं है किसी चीज को शांति से करने की। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि ये सारे जो विवाह वो अभी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसी प्रकार के क्षत्रिय ही है नहीं। क्षत्रियों के गुणों का और क्षत्रिय समाज का ही विघटन होने के कारण उनके जो पोषक तत्व है या पालन करने योग्य जो नियम है वो रहे ही नहीं। और प्रभुपाद कहते हैं यहां पे विशेष करके कि भारत विदेशों पर आश्रित रहने लगा, फलतः उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई और शास्त्रों के अनुसार अब सभी लोग शूद्र हैं। तथाकथित ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों ने अपने पारंपरिक कृत्यों का परित्याग कर दिया है, फलतः वे शूद्र बन चुके हैं। शूद्र का कार्य यानी किसी दूसरी की परिचर्या करना, दूसरे का काम करना। दूसरे का कार्य करना, दूसरे की सेवा करना, ये तो शूद्र का कार्य है शास्त्र के अनुसार। और कलयुग में हर कोई, हालांकि ब्राह्मण कुल में पैदा हो रखा है लेकिन ब्राह्मण का कार्य नहीं था, किसी के लिए नौकरी कर लेता है। पहले के जमाने में ब्राह्मण अपना जीवन केवल दान से, जो दान प्राप्त होता था उसी पे ही निर्भर रखे निकालते। लेकिन सामाजिक व्यवस्था का विघटन होने के कारण, क्योंकि सामाजिक संस्था को बनाए रखना क्षत्रिय का कार्य है, अभी क्षत्रिय है ही नहीं तो अन्य वर्ग कहां से रहेंगे, क्योंकि उनका रक्षण करता ही नहीं है। कहीं पे थोड़े बहुत ब्राह्मण आपको मिलेंगे जो अपने सिद्धांतों पे अपना जीवन बिता रहे हैं और उनकी तपस्या से सारा संसार चल रहा है। हाँ, जब सही में अराजकता है और समाज में दूसरा कोई नहीं है तो उस समय में आपत्कालीन धर्म का आचरण कर सकते थे, शास्त्र में वो मान्य है। लेकिन आपत्कालीन स्थिति में, अभी इमरजेंसी है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय का काम कर सकता है, क्षत्रिय शूद्र का काम इसका काम कर सकता है, वैश्य का काम कर सकता है, वैश्य शूद्र का काम कर सकता है। लेकिन आपत्कालीन स्थिति होने के पश्चात भी ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी शूद्र का कार्य नहीं कर सकते, ये शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन आजकल लोग हालांकि उन परिवारों में जन्म लिए हैं, लेकिन सारे के सारे शूद्र का कार्य में लगे पड़े, और ऐसे स्थिति में उनका उत्थान करके उनको ब्राह्मण बना के फिर भगवत भक्ति में आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी क्रांति है जो प्रभुपाद ने की है। हम आप ही देख लिए कौन समाज के कौन कौन से स्तर से आए हैं। अगर प्रभुपाद ने सोचो ये अगर किया ही नहीं होता तो आज हम होते यहाँ पे तो आप सोचो ये आपकी पात्रता है या भगवान की अहितु की कृपा है। भगवान की कृपा है ना। कई बार होता क्या है कि थोड़ा बहुत हम ज्ञान प्राप्त कर लेते किताबों से और सोचते कि मैं मेरे पात्रता के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है, मेरे एंडेवर के कारण, मैं अपना परिश्रम डाल रहा हूँ इसके कारण हुआ है। कि जब तक भगवान के भक्त या भगवान की प्रत्यक्ष कृपा हम पे नहीं होती, तब तक इस मार्ग में आगे बढ़ना या इस मार्ग के बारे में जानना भी हमें कठिन है। तो उसके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अथवा आप सोचो, ये ज्ञान फिर मिलता क्या हमें? फिर आगे के श्लोक में वो बताते हैं, याम हरि में पृष्ठे कन्वत अंग्रि शोभाम विक्रीडितम कंदुक विवलक्षाक्षाम विश्वानसूर्यम पतस्त्वां दिमानाम द्विला विलोक्य सम्मोहन विमूढ़ चेतः। कर्दम मुनि बताते कि मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत के ऊपर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वह अपने नुपरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। ऐसा लगता है कि आजकल की तरह उस समय भी गगनचुंबी भवन होते थे। यहाँ पर हर्म्य पृष्ठे शब्द आया है। हर्म्य का अर्थ है अत्यंत विशाल महल। स्वाद विमानात का अर्थ है कि अपने विमान से। इससे लगता है कि उन दिनों में भी व्यक्तिगत विमान या हेलीकॉप्टर होते थे। आकाश में उड़ते हुए गंधर्व विश्वावसु ने देवहूति को अपने महल की छत पर गेंद खेलते देखा। उस काल में गेंद खेलना भी प्रचलित था, किंतु राज परिवारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थान में नहीं खेलती थी। गेंद खेलना तथा अन्य आमोद प्रमोद सामान्य स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए नहीं थे। ऐसे खेल केवल देवहूति जैसी राजकुमारियां कुमारियां ही खेल सकती थी। यह बताया गया है कि उड़ते विमान से उसे देखा गया था। इससे सूचित होता है कि वह महल बहुत ही ऊंचा था, अन्यथा वह विमान से कैसे देखी जा सकती थी। यह दृश्य इतना स्पष्ट था कि गंधर्व विश्वावसु उसकी सुंदरता को देखकर तथा उसके नुपुरों की ध्वनि सुनकर सुंदरता एवं ध्वनि से इतना आकर्षित हुआ कि मोहग्रस्त होकर गिर पड़ा। कर्दम मुनि ने इस घटना को जिस रूप से सुन रखा था उसका वर्णन किया। अभी यहां पे दो बातें हैं। एक, हालांकि कर्दम मुनि जंगल में थे, अभी उनको कौन बताए कि उनके छत पे ऐसा ऐसा हुआ है करके। यानी उस जमाने में भी ऐसे कुछ माध्यम थे जिसके द्वारा आप ये सारी चीजों को जो अपने से कई एक संभावना है वो भी क्योंकि ये बोलते कि मैंने ऐसे सुना है, यानी किसी ने उनको बोला है। और दूसरी बात यहाँ पे बताते हैं कि उस समय भी गगनचुंबी यानी स्काई स्क्रैपर जो है वो थे, गगनचुंबी महल थे। और प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं कि इतना स्पष्ट था वो और इतना ऊंचा था महल कि उसके छत के ऊपर खेलने वाली स्त्री का सौंदर्य और उसके पैरों में बजने वाले जो नुपुर है वो भी उस विमान में सुनाई देते थे। आजकल विमान में कुछ सुनाई देता है ना, बाहर का मालूम पड़ता ना कुछ हा? लेकिन उस समय के लोग इतने प्रगतिशील थे कि उनके पास ऐसे विमान थे जो नॉइज प्रूफ थे, जिसमें नॉइज नहीं होता था, किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था। इसके लिए पैरों में बजने वाली नृपर की ध्वनि भी वे सुन सकते थे अपने विमान में। हाँ, और उसको फ्यूल नहीं लगता था, कोई ईंधन नहीं लगता था विमान को चलाने के लिए। इच्छा से उस बैठे हुए व्यक्ति की इच्छा के अनुसार वो विमान उड़ जाता। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो वर्णन किया गया है ये कितने प्रगत समाज का किया गया, कितने प्रगतिशील और क्या बोलते हैं उसको, सारे उपयोगिताओं से सुविद्य और प्राप्त वो समाज था। आजकल हमें विमान से उड़ना है तो कितनी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है मालूम है आपको। जैसे कोई विमान अगर इस शहर के ऊपर जाता है तो वो वैमानिक जो है, जो विमान चलाना वाला है, वो नीचे ग्राउंड स्टेशन पे उनसे कांटेक्ट कर लेता है कि हमारा विमान आपके यहाँ से इतनी दूरी पे, इतनी स्थित पे हम जा रहे हैं, हमें आप पैसेज दे दो। परमिशन मांगनी पड़ती है हर जगह पे उनको परमिशन, इसलिए वो विमान चलाने वाला यहाँ वहाँ नहीं देख सकता, उसको केवल पूरी तरह से उस पैनल पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे हम देखते ये विमान में बैठ के जा रहे, लेकिन आराम से यहाँ वहाँ देखते हुए सारी चीजों का आनंद लेते हुए जा रहे। तो कितने प्रगतिशील थे वे लोग, क्योंकि सारा भगवान के इच्छा के ऊपर निर्भरता और सब भगवान के इच्छा के अनुरूप कार्य किया करते। और ऐसे समाज में ही जीवों का उत्थान हो सकता है। हम कहते हैं बार बार क्या, अरे 10,000 सालों तक अभी ऐसा सुवर्ण युग आने वाला है। कब आएगा? जब ये शुरू में हम अगर इन सारे तत्वों का अपने जीवन में पालन करेंगे, तब आगे जाके कैसा समाज बन सकता है? अगर हम करेंगे नहीं तो कहां से बनेगा समाज? हालांकि भगवान की इच्छा तो बनी जाएगा, लेकिन उसका साधन हम नहीं बन पाएंगे। भगवान किसी और पात्र सुयोग्य व्यक्ति को उसका साधन बना, अगर हमें वो अवसर प्राप्त होता है तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। इसलिए इन सारी बातों को प्रभुपाद यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा क्या जरूरत है फिर इन सारी चीजों को इतनी स्पष्टीकरण के साथ इतने स्पष्ट रूप में बताने की है? आवश्यकता है ताकि एक समाज ऐसा निर्माण हो जहां में भगवान को केंद्रित रख के लोग आगे बढ़े। तो आइए प्रयास करते हैं जितना अपनी अपनी पात्रता और क्षमता के अनुसार कर सके। हरे कृष्ण। पहले के जमाने में पर्वतों को भी पर थे, पर्वत भी उड़ा करते थे, स्थिर नहीं थे, ये भी घूमा करते थे। वो तो कृत योग, त्रेता योग, सत्य युग की बातें हैं। जिस समय मनुष्य और देवता एक दूसरे के अनुरूप या एक दूसरे को मदद किया करते थे, उचित यज्ञों का अनुष्ठान करके, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि एक दूसरे का सहयोग लेकर मनुष्य और देवता कार्य किया, और उसी प्रणाली के कारण इतनी सारी सुविधाएं उस समय संपन्न थी। हर चीज उस समय केवल मंत्रों के द्वारा चलती थी, क्योंकि लोग उतने कुशल थे, मन उनका उतना नियंत्रित था कि उस मन के द्वारा वे जड़ वस्तु के ऊपर भी अपना अधिकार प्राप्त कर सकते थे। आज तो स्थिति ऐसी है कि किसी जीवित व्यक्ति के साथ भी अगर मैं व्यवहार करना है तो मुश्किल हो जाता है, वो इतने जड़त्व को प्राप्त हो चुके हैं। और ये सारे लक्षण शूद्र प्रवृत्ति के हैं। और प्रभुपाद इसे तात्पर्य बताते हैं कि विशेष करके कलयुग में संभव यानी हो सकते हैं लोग शूद्री हो सकते। हरे कृष्ण।